Kalpa Radio Exclusive Interviews. अर्पा रेडियो पर आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बिलासपुर के एक युवा कलाकार से, एक युवा उद्यमी से। और ये युवा है प्रवीण पुरैना, जो बॉम्बे दिल्ली में स्थापित होने के बाद अपने शहर वापस आए हैं और यहाँ रहकर अपने सपनों को ऊंचाइयाँ देने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में लेकर चल रहे हैं अपने शहर के युवाओं को। तो चलिए बातचीत करते हैं प्रवीण पुरैना से।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।
बिलासपुर शहर को सांस्कृतिक न्यायधानी माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे कलाकार हैं जो आज भी लोगों के सामने नहीं आ पाए हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपने समय में सांस्कृतिक गतिविधियों में बहुत आगे रहे, उन्होंने कुछ करने की सोची, शहर से बाहर गए, नाम कमाया और आज की स्थिति के कारण बहुत सारे लोगों को वापस भी आना पड़ा। लेकिन चूंकि अब बिलासपुर से निकले हुए लोग बाहर अपने पैर जमा चुके हैं, तो अब सोशल मीडिया के इस युग में पूरी दुनिया उनकी है। आज ऐसे ही एक बिलासपुर के कलाकार जो दिल्ली, मुंबई सब जगह पर अपने काम कर चुके हैं और बिलासपुर आकर बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हैं अर्पा रेडियो में। नाम है इनका प्रवीण पुरैना। प्रवीण जी, आपका स्वागत है अर्पा रेडियो में।
थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए।
तो प्रवीण, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि बिलासपुर में आप कब रहे, फिर यहाँ से आपका बाहर जाना कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ?
थोड़ी सी लॉन्ग स्टोरी है। मैं जब 10th में था, आई थिंक 19 साल का था, तब मैं यहाँ से निकला था कुछ चीज़ें क्लियर करने के लिए। दिमाग में चीज़ें थी, कुछ अलग करना है लाइफ में, आगे जाना है, तो तभी मैं मास कम्युनिकेशन के लिए घर से निकला था। जो मेरी पहली जर्नी थी बिलासपुर से दिल्ली, फिर वहाँ मैंने मास कम्युनिकेशन किया और उस वक्त मैं कैमरे के पीछे रहता था। मेरा काम था वीडियो एडिटिंग करना, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी रहा हूँ। तभी उतना एक्सपीरियंस नहीं था मुझे कि मुझे एक्टिंग करना है, मैं एक्टर बन सकता हूँ। लेकिन जब हम धीरे धीरे काम करने लग गए, खुद हमारा ऐसा होता था कि मूवी हम खुद एडिट कर रहे हैं और उसको प्रोजेक्ट बना के खुद उसको अपलोड कर रहे हैं, तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं कैमरे के सामने आता हूँ, अब बारी है कैमरे के सामने आने की। फिर वहाँ से टिकट कट गई मुंबई की।
लेकिन मास कम्युनिकेशन करने के नाम से जब यहाँ गए थे, तो ज़्यादातर लोग मास कम्युनिकेशन करने के बाद जर्नलिस्ट फील्ड में जाते हैं।
जी हाँ जी।
एक्टिंग फील्ड कैसे दिमाग में आ गई?
इस मामले में घर में डांटी बहुत पड़ी मुझे। लोग मेरे घर वाले कह रहे थे कि बेटा तुम तो कोर्स करने गए थे, हमको लगा भी कोर्स में कुछ करोगे तुम, अभी क्या नया भूत सवार कि आपको एक्टिंग करनी है। लकीली मेरे फादर बहुत सपोर्टिव थे मुझे लेकर, वो हमेशा ही कहते थे कि बेटा जो दिल करे वो करो, बस निराश नहीं होना, आगे बढ़ते रहना। तो मैं निकल गया फिर वहाँ से।
तो वहाँ से निकल कर फिर
वहाँ से निकल कर मुंबई पहुँचे। फर्स्ट टाइम पहले अपनी टिकट कराई फ्लाइट की, कहीं फ्लाइट में बैठे नहीं थे, तो एक अंदर से वो जुनून था कि कुछ, उस टाइम मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता था दिल्ली में, तो उस वक्त पैसे थोड़े बहुत इकट्ठे मैंने किए। मैं बोला कि मुंबई जाना है, तो बिना कुछ सोचे, कोई कॉन्टेक्ट नहीं किए, कोई पूछ परख नहीं, सीधा लैंड किया मुंबई में। और अब हम रूम ढूंढ रहे हैं। रूम ढूंढते ढूंढते लकली एक दोस्त पहचान का मेरा, शायद ऑडिशन में हम मिले थे, उनका नाम था अभिषेक बच्चन, शायद उनका नाम था। तो मैं उनको पूछा भाई कि कुछ दिन के लिए रहना है मुझे, तो कहता भाई आ जा रह ले। तो लकली 6-7 दिन उन्होंने काफ़ी मुझे साथ, तो बोले और आगे तक रह ले, पर बोला नहीं जैसे भी करके मैं ढूंढूंगा। फिर वक्त गुजरता गया, रूम ले लिया मैं, फिर फिटनेस फील्ड में घुस गया, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चलती गई स्टेप बाय स्टेप।
हम आगे बढ़े उससे पहले ये जो अभिषेक बच्चन पार्ट टू आपने नाम लिया।
हाँ, अभिषेक बच्चन कोई बच्चन साहब के बेटे नहीं है वो अभिषेक बच्चन नॉर्मल है, उनका नाम अभिषेक बच्चन है और उनका घर हिमेश रेशमिया जी के स्टूडियो, उनके बगल में उनका घर था।
तो मतलब उसी के साथ जब रहने लगे तो आप भी हिमेश रेशमिया जी के पड़ोस में,
ऐसा कह सकते हैं,
पड़ोस के घर में
पड़ोस कह सकते हैं। उस वक्त एक स्पार्क हो गया था, कह रहे मुंबई में रह रहा हूँ, बगल में हिमेश रेशमिया के स्टूडियो, भैया स्टूडियो रिकॉर्ड होता।
तो इसके बाद आपने एक बात बोली कि एक्टिंग से फिर मैं फिटनेस की तरफ बढ़ गया, लेकिन अभी एक्टिंग का कैरियर शुरू ही नहीं हुआ है। एक्टिंग में क्या क्या आपको उपलब्धियां हासिल हुई, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
इसके पीछे भी एक रोचक स्टोरी कहिए। जब मुंबई में नया नया गया, तो ऑडिशंस होते थे, तभी मैं दिल्ली से एक चीज़ लेकर आया था, वो फिटनेस। मैं काफ़ी पतला दुबला हुआ करता था तो थोड़ी बहुत फिजिक बन गई थी। तो जब भी ऑडिशन में घूमता था, कहीं भी जाता था लाइन पे, तो लोग देख के बोलते थे, एक वो वहाँ पे क्राइटेरिया फिट नॉट फिट वाला, तो देख के बोलते थे फिट नॉट फिट, तू फिट है नहीं, तो मोस्टली रिएक्शन ऐसे होते थे। तो मैं पूछता था भाई रीज़न क्या है, तो कोई कह रहा भाई बॉडी बना ले फिर दमादम तुझे रोल मिलेंगे। अच्छा ठीक है भैया, बॉडी बनाना है थोड़ी है, थोड़ी और बना लेते हैं।
अच्छा मतलब हम अपने जो ऐसे श्रोता हैं जो फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं या एक्टिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक जानने वाली चीज़ है कि अगर बॉम्बे जा रहे हैं और एक्टिंग का जुनून है तो बॉडी फिट होनी चाहिए। फिट और नॉन फिट वाली चीज़ के बारे में लोगों को जानकारी नहीं,
पता
नहीं होती
है। आप लाइन पे एक ऐसे मजदूरों की तरह लाइन होती है वहाँ पे, और आपके प्रोडक्शन हाउस के सामने देखते हैं, अरे तू कैरेक्टर में फिट है, तू नहीं है, नॉट फिट नॉट फिट, तो आपको बोलने का मौका देने से पहले ही आपको वहाँ से भगा दिया जाता है, क्योंकि आप उस कैरेक्टर में नहीं हो। तो जब मेरी बॉडी नहीं थी तो मुझे ये बोल के भगाया जाता था, भाई तुम्हारी बॉडी नहीं है, जाओ बॉडी बना करो। फिर जब बॉडी बना लिया तो कहते हैं तुम एक्टर के हिसाब से बहुत ज़्यादा बॉडी हो गई, अब बॉडी कम कर लो।
अच्छा,
तो एक उनका वो क्या ट्रिक था मुझे आज भी समझ नहीं आया। फाइनली जब मेरा पहला काम भी हुआ था प्यार तूने क्या किया, तभी मैं नॉर्मल था ना, बॉडी कम थी ना ज़्यादा थी, और काम किया मैं।
प्यार तूने क्या किया,
ये हाँ। जिंग चैनल पे आता था।
अच्छा,
सीजन 6 2016 में मेरा पहला एपिसोड था, फर्स्ट।
अच्छा, तो उसमें आपका पूरी सीरीज थी, अच्छा रोल मिला
उस पे। ये था, वो भी एक कहानी थी, मैं 8-9 महीने से बस ऑडिशन दे रहा हूँ। हमारे एक पीजी हुआ करता था, लाइक हॉस्टल, हम घर आते थे, सबसे पूछ रहा भाई तू कहाँ गया था, मैं यहाँ गया था, तेरा कुछ हुआ, बोला नहीं मेरा कुछ नहीं हुआ। तो एक वो माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया था। फिर सम टाइम ऐसा हो गया, लोगों को काम मिलना चालू हो गया, और घर से हम निकलते थे कोई बताता नहीं था कहाँ जा रहा है, और लकली हम वहीं पर जाके सब मिल जाते थे, अच्छा तू भी आया, हाँ भाई मैं ऐसे आ गया, मतलब कोई किसी को बता नहीं रहा ऑडिशन हो रहा आप चलो। उनको ये था कि भाई इसको काम ना मिल जाए या ये आगे ना बढ़ जाए। अब मेरे साथ क्या हुआ, बस रूम में हर किसी को कुछ ना कुछ मिल रहा है, कोई लीड कर रहा है, कोई सेकंड लीड कर रहा है, कोई 2 दिन का शूट कर रहा है, कोई जी टी में आ रहा है, सोनी में आ रहा है, और मैं वहाँ बैठा मिल रहा, मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो डिप्रेशन लेवल वहाँ से बढ़ता गया। तो सडनली वहाँ पे भी एक दोस्त थे मेरे, जिम में मुझे मिले थे, तो उन्होंने मुझे लिंक दिया, 2-3 प्रोडक्शन हाउस के नंबर दे के, प्रवीण इनको पिच करो जाके देखो शायद कुछ हो जाए। तो मैंने पिच किया लॉस्ट बॉय प्रोडक्शन हाउस, विकास गुप्ता, उनको पिच किया मैंने काम के लिए, सर मुझे काम करना है। तो 1.5-2 महीने बाद सडनली उन्होंने मैसेज सीन किया, कहते आ जाओ स्टूडियो, ऑडिशन है, ऑडिशन तो देखते हैं। मैं ऑडिशन के लिए गया हूँ, एंड देन ऑडिशन हुआ है, और मुझे कहते हैं हो गया काम आपका, आप सिलेक्ट हो। मैं बोला अच्छा, क्योंकि मैं 8-9 महीने से भटक रहा था यहाँ, मुझे यकीन ही नहीं हुआ, मैं वहाँ से चला गया, मतलब हो गया ऐसे ही बोल दिए हैं कि हो गया, मैं निकल गया वहाँ से। 3 दिन बाद कॉल आता है कि सर आपकी स्क्रिप्ट रेडी हो गई, हम आपको मेल कर रहे हैं, आप प्रिपेयर कर लीजिए, और 5-10 तारीख से शूट स्टार्ट है। तो तभी मुझे यकीन नहीं था, मुझे लगा अभी भी फिरकी चल रही है, क्योंकि वहाँ पे काम का कुछ पता नहीं, कब आपको रिप्लेस कर देंगे, कब कोई नया काम कर लेगा, कुछ नहीं मालूम आपको। एंड में जब मुझे फिटिंग के लिए बुलाया गया, ड्रेसिंग के लिए, तब भी मैं, अब वहाँ जो मेरा कोई एक्टर था, यानी कि मैं बड़ा भाई बना था, वो छोटे भाई बने थे, तो जब फिटिंग का टाइम आ रहा था ना, तो मैं, मुझे दिए जाते कपड़े, अंकल टाइप के कपड़े जिसको बोलते हैं सफारी, और उनको बढ़िया टी शर्ट जीन्स, तो मैं बोला यार मुझ में क्या कमी है, मतलब उनको ऐसा मेरे को ऐसा, तो मेरा मन एकदम ऐसा हो गया। फिर बोला कोई नहीं प्रवीण, पहला काम है चलो। अब सेट पे पहुँचे, अब वहाँ पे जो इज्जतें मिल रही हैं आपको, सर अखिलेश सर वैनिटी में बैठा रहे हैं, चाय आ रही, कॉफ़ी आ रही, पर्सनल रूम आपको मिल रहा है। बोला अरे वाह, तो बहुत अच्छी इज्जत मिल रही है, बताओ। देन जब कपड़ा पहना आ गया, तब भी मैं फील कर रहा, अरे यार क्या कपड़े मुझे पहना दिए। लास्ट में क्या हुआ, एक मूछ, उस कैरेक्टर में मूछ था, जैसे वो मूछ लगी ना, वो एक कैरेक्टर लाइव हो गया। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि भाई हाँ प्रवीण अच्छा तुझे यही रोल मिला, क्योंकि मेरा मोस्टली फेस नॉट चॉकलेटी जैसा कुछ है, थोड़ा अग्रेसिव फेस लगता है, मुझे लगता है, मतलब मैं निगेटिव शेड में ज़्यादा अच्छा लगूंगा। तो जैसे वो मूछ लगी ना, पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो गया मेरा, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि भाई हाँ यही चाहिए था मुझे। और फिर अपने मैंने उसमें बेच दिया, तो उसमें मेरा सेकेंड लीड था, मेन लीड उसमें थी आस्था चौधरी, बहुत सीनियर एक्टर, दार अभी जो थे गुप्ता, उनके साथ काम कर चुके थे बालिका वधू में, तो उनके साथ था, बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा। कि वो भी पहले दिन नर्वस था, मैं तो कहते नहीं आराम से रहा, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनसे काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे, क्योंकि मेरा पहला एपिसोड था, और अच्छी बात थी सारे शॉट 1 टेक शॉट थे, तो डायरेक्टर का भी अप्रिसिएशन रहा, वो लाइव हुआ, घर वालों ने देखा, दोस्तों ने देखा, आज भी कभी भी लाइव होता है वो।
अच्छा।
तो मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट था कि मैं पहला काम बहुत अच्छा रोल, तो वहाँ से मुझे एक एक्टर की पहचान मिल गया। सिर्फ बोलना नहीं कि हाँ फाइनली मैं एक्टर हूँ।
उसके बाद फिर आपको और
हाँ, उसके काम बाद मिला? फिर उसके बाद तो ऐसा लगा कि आप स्टार बन गए हो, सबकी नज़र आप पे है, अब तो रोज काम मिलेगा आपको, कोई काम नहीं। लगभग 4-5 महीने फिर गायब सब कुछ। फिर सडनली एक रात को कॉल आता है, प्रोडक्शन हाउस एक मैम थी, कहती प्रवीण कल शूट है। तो मैं बोला कल शूट है? बोलती हाँ, मैं आप जल्दी अपना इंट्रो भेजूँ। तुमको इंट्रो भेज दिया मैं, कहती सुबह आ जाना, कामदेव का रोल है। तो वो था जी टी में, शो का नाम था नीली छतरी वाले। और उस दिन भी 14 फरवरी का शो था वो, और एपिसोड पूरा मेरे ऊपर ही था। तो बाय डेस्टिनी बोलिए या जो भी है, वो दूसरा काम ही मुझे बहुत अच्छा मिला। वो एपिसोड ही मेरे ऊपर था, कामदेव के ऊपर था एपिसोड। तो वो दूसरा काम लोगों ने देखा, उस पर काफ़ी सराहना मिली, लोग देखे पसंद किए। उसके बाद फिर वैसे ही हुआ, फिर गैप आया। तो उसी गैप में फिर ये फिटनेस वाली चीज़ की उत्पत्ति हुई कहा जाए। लोग बोल रहे हैं कि यार बॉडी बना के घूम रहा है तू, क्या एक्टिंग करेगा, क्या करेगा। बोले ठीक है अब यही कर लेते हैं। फिर घुस गया उसमें। फिर जैसे ही घुसा, कंपटीशन उसी वक्त था, लकली 200 में से मैं पहले कंपटीशन में सेकंड आ गया। दो जगह कंपटीशन था बैक टू बैक, एक गोवा में था और एक अहमदाबाद में था। तो पहला अहमदाबाद में किया, फिर सीधा फ्लाई करके गोवा भागा। तो बैक टू बैक दो शो किया, और वहाँ से वापस आते फिर मुझे स्पॉन्सर मिलने लग गए, बिग मसल कंपनी सप्लीमेंट, आज काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो उस कंपनी को मैंने 5 साल प्रमोट किया, 2012-13 से लगभग 16 तक। अभी वो कंपनी करोड़ों के टर्नओवर में है, अकाउंट वेरीफाई हो गया है, 10,000 फॉलोवर से आज लाखों के फॉलोवर हैं उनके। और अभी रणवीर सिंह उसको ब्रांड एंडोर्समेंट कर रहे हैं।
अच्छा।
फिर अब मुझे लगा भाई जैसे ही वो आए तो एथलीट को इज्जत कम मिलने लगी, क्योंकि अब नया चेहरा उसमें जुड़ गया, बड़ी हस्ती जुड़ गई। तो उसको मैंने खुद से ही छोड़ दिया, अब बहुत कर लिया लोगों के लिए, अब अपना खुद का करना है। फिर ये सडनली लॉकडाउन का पीरियड आ गया, यहाँ आया मैं, सब चीज़ें एक्सपीरियंस 7-8 साल का था। तो अब जाके मैंने फाइनली अपने खुद की सप्लीमेंट कंपनी चालू की है, माई फ्यू न्यूट्रिशन के नाम से।
अच्छा
जी।
तो ये अब बिलासपुर में ही है ये कंपनी?
कंपनी एस्टैब्लिश बिलासपुर में है, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है। अभी पैन इंडिया भी हो जाएगा वेबसाइट के थ्रू। अच्छा। तो आपको प्रोडक्ट कहीं से भी कोई भी ऑर्डर कर सकता है। जी
चलिए बहुत अच्छी बात है प्रवीण की। आप ठीक है, आप एक्टिंग का जो क्रेज था वो दूसरी तरफ मॉडलिंग की तरफ गया, वहाँ से आप फिटनेस की तरफ आ गए, लेकिन बहुत सारे लोगों के प्रेरणादायी बने होंगे इस दौरान जो है। बहुत
बिलासपुर शहर में मैं पहला शायद उस वक्त था कि लोग बोलते थे कि अरे प्रवीण जैसा बनना है, हमको भी एथलीट बनना है, प्रवीण भैया चले गए तो हम भी चले जाएंगे। तो मेरे लिए थोड़ा प्राउड मोमेंट है कि लोगों ने मुझे देखकर फिटनेस में आना चालू किया, जिम जाना चालू किया और कंपटीशन करना चालू किया।
तो अब बिलासपुर वापसी हो गई है, चाहे लॉकडाउन के कारण हो, चाहे फैमिली कुछ कारण रहे हों आपके आने के वापस, तो अब आप बिलासपुर के लिए क्या सोचते हैं? बिलासपुर को कैसे समृद्ध करना है, फिटनेस में आप अपने आने वाले लोगों को कैसे सिखाएंगे, और जो कंपनी आपने शुरू की है उसमें और लोगों को कैसे जोड़ेंगे?
वेल पहला तो मेरा यही, अपने शहर के लिए मैंने अपनी खुद की कंपनी से ले चालू की, क्योंकि आजकल जो कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनी का नहीं पता मुझे, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियाँ आ गई हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, केमिकल वगैरह यूज़ कर ले, डुप्लीकेट्स ही बहुत आ गए सप्लीमेंट में आजकल. तो मेरी कंपनी को खोलने का मोटो ये था कि मैं लोगों को सही चीज़ दे पाऊँ, ऑथेंटिक चीज़ दे पाऊँ बिना केमिकल के. तो पहला तो मेरा प्रयास यही रहेगा सभी जितने भी मेरे शहर के लोग हैं उनको सही सप्लीमेंट प्रोटीन मिले ताकि अपने हेल्थ पे वो अग्रसर रहें. और दूसरा कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूब की ओर आने की. यूट्यूब में मैं सोच रहा हूँ कि वर्कआउट वीडियोज डालना चालू करूँ ताकि लोग उसको फॉलो करें.
और अब इस फील्ड में आने के बाद क्या एक्टिंग का जुनून छूट गया?
नहीं नहीं, एक्टिंग ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी एक्टिंग ही रही है. उसको जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ साइड बाय साइड मुझे रखना पड़ा.
तो अभी लेटेस्ट क्या किया?
अभी लेटेस्ट मैंने एक गाना शूट किया, मायरी, हिंदी सॉन्ग है, अच्छा गाना है. छोटी सी टीम थी हमारे यहाँ की,
बिलासपुर
के हिसाब से बहुत अच्छा काम था उनका. सिंगर भी अच्छे थे, एक्ट्रेस भी, पहला काम था उनको, उनके हिसाब से काफी अच्छा काम किया.
माही मेरा वे रब दे वरगा दसदानी मैनू, माही मेरा वे रब दे वरगा दसदानी मैनू, के दिल विच वसे तू. माही मेरा वे रब दे वरगा दसदानी मैनू, माही मेरा वे रब दे वरगा दसदानी मैनू, के दिल विच वसे तू. ए खुदा बस इतनी मोहलत दे नूरानी चेहरे को छू लेने की इजाजत दे.
तो ये पहला काम है. और उसके अलावा मैं अभी खुद का प्रोडक्शन हाउस चालू करने वाला हूँ.
अच्छा
जी हाँ,
मतलब आप अपनी फैक्ट्री अपने प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्शन हाउस भी.
अब सब अपना करना है मुझे. मैं सोचा काफी भाग गया लोगों के पीछे, अब जितनी ताकत होगी ऊपर वाला चाहेगा तो खुद सब करेंगे भी. तो पौधा एंटरटेनमेंट के नाम से प्रोडक्शन हाउस स्टैब्लिश होने वाला जल्दी, उस पर मैं प्लानिंग कर रहा हूँ पहला वेब सीरीज, उसके बाद देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं.
तो उसमें आप लोकल लोगों को कितना चांस देंगे? अब आपके तो कॉन्टैक्ट्स बॉम्बे दिल्ली सब तरफ हैं, तो
डेफिनेटली सभी को काम मिलेगा जो मेरे आसपास के लोग हैं. इवन कोशिश करूंगा कि जो चीजें मैंने फेस की यहाँ जो नए कलाकार है उनको ना करना पड़े.
आपको लग रहा है कि बिलासपुर में अब वो स्पार्क आ गया है कि यहाँ के बहुत सारे लोग एक्टिंग चाहते हैं या इस तरह की चीज़ें सीखना चाहते हैं, बॉम्बे जाना चाहते थे लेकिन अब नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ के लोगों से?
बिल्कुल हो रहा है, शुरुआत हो गई है. और इसका एक बहुत ही अच्छा मैं उदाहरण देना चाहूँगा. रीज़न ये है कि पहले क्या था, हमको मुंबई जाना पड़ता था खुद अपने आप को दिखाने के लिए. लेकिन अभी का जो दौर है, पहले तो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और उसके अलावा इतने सारे
प्लेटफॉर्म्स,
टिकटॉक, रील्स, तो अभी किसी को कहीं जाना नहीं पड़ता. अपना जो भी है टैलेंट वो बस शूट किया, डाल दिया, पूरी दुनिया देख रही है. तो एक अभी का बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है नए कलाकारों के लिए कि उनको भटकना ज़्यादा नहीं पड़ता है, अपनी चीज़ों को वो सोशल मीडिया के थ्रू ही दिखा सकते हैं. और शुरुआत हो गई है, लोग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ भी चल रहा सब कुछ, तो उनके लिए एक छोटा सफ़र बच जाएगा. हाँ, मुंबई नहीं जाके भी घर में वो सब कुछ कर सकते हैं. और जो बची खुची चीज़ें मैं पूरी कर दूँगा अपने प्रोडक्शन हाउस से.
चलिए, आपकी इस प्रोडक्शन हाउस के जल्दी से खुलने का हम इंतजार करते हैं. और माय फ्यूल न्यूट्रिशन की जो आपकी कंपनी चल रही है उसके प्रोडक्ट्स भी लोगों तक पहुंचे जिसमें केमिकल्स यूज नहीं किए जा रहे हैं और लोग अपने आप को फिट बनाएं इस आज के दौर में. हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी.
थैंक यू सो मच मैम मुझे बुलाने के लिए.
अर्पा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज.
अर्पा रेडियो के कार्यक्रम एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज में आज हमने मुलाकात की अपने सपनों को ऊंचाइयों की ओर बढ़ाने वाले बिलासपुर के युवा प्रवीण पुरैना से.
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा.